ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कला शासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित तो यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है नित्य प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में यह विशेष कार्यक्रम श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ यह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ था 5 वर्ष पहले उन्हें याद होगा उस दिन में बताया था निर्वाण दिवस तो तारीख के अनुसार होता है 8 तारीख में और जिस दिन ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ था 9 तारीख में उसी दिन तिथि के अनुसार उनका निर्वाण दिवस था एकादशी निर्वाण दिवस अर्थात तो उनके निर्वाण दिवस तिथि के अनुसार कला शास्त्र में तिथि के अनुसार मनाते हैं तिथि के अनुसार जिस दिन निर्वाण दिवस उस दिन ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ था गीता का 5 वर्ष पहले 2012 में। अब एक कल तक श्रीमद भगवद गीता का प्रथम अध्याय जिसको अर्जुन विषाद योग नाम से कहा गया कल आया समाप्त हुआ गीता इति श्रीमद भगवद गीता सुगह करके गीता को उपनिषद कहा उपनिषद ब्रह्म विद्या ये श्रीमद भगवद गीता ब्रह्म विद्या है गीता अमृत वर्षिणी अद्वैता अमृत वर्षिणी ब्रह्म विद्या है योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग पहले हुआ प्रथम अध्याय अर्जुन आगे शिष्य रूप से श्रोतावन करके सुनेगा शिष्यस्ते हम साधिमाम तो हम प्रपन्नम और भगवान श्री कृष्ण आचार्य गुरु रूप से ज्ञान का उपदेश करेंगे उपदेश सफल वही होता है जो योग्य शिष्य हो शिष्य में योग्यता नहीं है तो उपदेश सार्थक नहीं हो सफल नहीं होता है अर्जुन में योग्यता तो है भगवान श्री कृष्ण के सामने है कम नहीं है भगवान श्री कृष्ण के नाम लेने से ही पवित्र हो जाते हैं उनके दर्शन और उनके सखा प्रिय तो है वे फिर भी संसार में अनादिकाल से विभिन्न वासना के कारण कभी कुछ इच्छा हो जाती है तो यहां स्पष्ट करके दिखा दिया अर्जुन ने कि अपि त्रैलोक के राज्य से हेतु तो कि न मही कृते तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी इनको मैं मानना नहीं चाहता हूं और वैराग्य विवेक है तो और भी आगे कहा जाएगा विवेक दिखाया देह से भिन्न आत्मा है नरक के नियतम वास का उसके बाद कथम भीष्म संख्य इनको कैसे मैं मारूं जिनके उनको सामने खड़े हैं उनको मैं मारने पर कुलक्षकृत दोष होगा कैसे हम कुलक्षकृत दोष करेंगे कुल क्षय होने पर कुल धर्म समाप्त हो जाते हैं धर्म में यदि कुल में धर्म सत्कर्म पूजा पाठ आदि हो रहा है तब तो कुल धर्म कुछ रहता है जब बहिर्मुख अत्यधिक हो करके ये सब से छोड़ करके नाम जप कीर्तन व्रत उपवास त्योहार छोड़ करके बहिर्मुख हो जाते हैं तो कुल धर्म समाप्त होता है तो कुल धर्मे धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्म बढ़ जाता है अधर्म बढ़ने पर धर्म को दबा देता है धर्म को जब दबा देगा धर्म कम हो जाएगा अधर्म बढ़ जाएगा अधर्म अधिक होने पर कुल स्त्री प्रदूषित हो जाते हैं स्त्री दूषित होने पर वर्णशंकर होता है घर में कई वर्णशंकर जन्म हुआ तो पितरों को और कुल के नरक के लिए हो जाता है फिर नरक जाते हैं जिनका ऐसे ही नरक में वास नियत होता है हम सुने आए इसलिए कुल धर्म नष्ट नहीं हो कुल नाश नहीं हो हम युद्ध नहीं करेंगे उसकी अपेक्षा में बिना प्रतिकार शस्त्र लेकर नहीं लेकर खड़ा रहूं और शस्त्र लेकर के दुर्योधन आदि मुझे मार ले तो भी मेरा क्षेम कल्याण होगा श्रुति में आता है परिच्छलोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृत नाम सतत विज्ञानार्थम गुरु में भी अभिगछित समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम परिच्छ लोकान कर्मचितान लोक कर्म से प्राप्त फल इनकी परीक्षा करेगी विचार करे देखे कुछ कर्म करते हैं लौकिक कर्म करते यह लोक प्राप्ति में यह लोक में धन संपत्ति ख्याति आदि की प्राप्ति होती है जब जरूर यागादि कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्योंकि उसका विचार करे देखे जैसे यहां कर्म से कुछ प्राप्त होता है समाप्त हो जाता है इसी प्रकार पुण्य चित्त लोग क्षीयते समाप्त होता है क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम इसमें कहेंगे आते हैं समाप्त हो जाता है नित्य फल प्राप्त नहीं होता है और कोई नित्य नहीं हो सकता है जितने धन संपत्ति इकट्ठी करे समाप्त होता है चल जाता है छोड़ कर जाता है धन संपत्ति छोड़कर नहीं जाते स्वयं धन संपत्ति को छोड़कर चल जाता है इसके विचार करके परीक्षा करके परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आया तो वैराग्य को प्राप्त करे संसार से वैराग्य नहीं हो तो जन्म व्यर्थ है भोग करने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हुआ भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं वैराग्य हो विचार करके देखे भोग करते करते इसके पहले कितने जन्म कितने करोड़ बार कितने जन्म कर लिया कितने जन्म प्राप्त करने के बाद कितने भोग कर लिया ऐसा कोई भोग नहीं जिसको करोड़ करोड़ बार भोग आपने नहीं किया ऐसा नहीं सब तो भोग कर लिया ब्रह्मांड घूम लिया कितने हजार करोड़ बार स्वर्ग में गया होगा केवल स्वर्ग नहीं सब स्वर्ग भी गए नरक भी गए 84 लाख चक्र योनि में घूमे भटके सब बहुत कुछ नहीं देखने का स्थान कोई नया नहीं सब स्थान घूम लिया सब योनि में भटक लिया किंतु मालूम नहीं होने से फिर वो वासना होती पीछे चलता है सब इधर उधर इदम में स्याद यही करते करते कुरुवते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते कर्म करता है भोग करता है भोग करता है फिर वासना बढ़ती वासना होने पर फिर कर्म करता है जन्म मरण चक्र चल रहा है इसलिए इसके विचार करके सब ब्राह्मण निर्वेद वैराग्य को प्राप्त करे तद विज्ञानार्थम स गुरु में भी गचेत नित्य फल प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होती है नित्य मुख्य रूप प्राप्ति के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरु में भी अभिगछेत समित पानी हाथ में समित लेकर के उपहार लेकर के नम्रता के साथ श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु ऐसे होना चाहिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शास्त्रार्थ ज्ञान संपन्न होने पर श्रोत्रिय भी दुर्लभ है श्रोत्रिय भी कब मिल जाए शास्त्र ज्ञान संपन्न हो श्रोत्रिय श्रोत्रियंश छंदो धीरे महर्षि प्राणी ने सूत्र बनाया श्रोत्रियंश छंदो धीरे छंद है वेद अध्ययन करने वाले वेद के नाम लेते ही वेद के अंगों का भी ले लेना जैसे कोई व्यक्ति देवदत्त आ गया तो उसके हाथ पैर सिर कहीं रख करके आया देवदत्त आए तो उसके साथ अंग सब है नाम लेते ही अंगों का आ गया अंगों के साथ सब या हाथ पैर ने कान नाक को रख करके आ गया क्या ऐसा होगा देवदत्त आ गया तो सब अंगों के साथ इसी प्रकार वेद के नाम लेने से वेद के अंगों का ही ग्रहण हो जाएगा छह अंग वेदों का चार वेद में छह अंग है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये सारे वेद सब वेद के अंतर्गत आ गया तो इसे कर्मचित लोकान परीक्षा करके ये ब्राह्मण सब विज्ञानार्थम गुरु में अभिगछेत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो ये वेद अध्ययन करने वाला अंगों के साथ उसको श्रोत्रिय कहा जाता है जो वेद अध्ययन कर लिया श्रुति कहते ऐसे गुरु के पास जाए जो श्रोत्रिय हो अर्थात तो सारे अंगों के साथ वेद का अध्ययन क्या होगा तो श्रोत्रिय होता है महर्षि पाणिनि सूत्र बनाया श्रोत्रियंश छंदोधीते वेद को पढ़ने वाला पढ़ा हुआ जानता है वेद के नाम लेने से अंगों का भी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत छंद ज्योतिष छह अंग है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के लिए कहा गया केवल श्रोत्रिय नहीं आगे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय मिलना भी कठिन है जब कहीं मिल जाए तो ब्रह्मनिष्ठ मिलना बहुत दुर्लभ है और ब्रह्मनिष्ठ कौन है, किसको ब्रह्मनिष्ठ कहेंगे? ये उपदेश करते अज्ञानी को, तुम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। ब्रह्मनिष्ठ क्या है मालूम नहीं, श्रोत्र क्या भी मालूम नहीं, सारे शास्त्र का अध्ययन ज्ञान करने चलो कुछ मालूम हो जाए। जो बहुत कथा बहुत प्रवचन करता है, लोग को श्रोता बहुत होता है तो उसको श्रोत्रिय कहा जाएगा? सारे वेदार्थ ज्ञान उसके नहीं, प्रसिद्ध हो जाएगा, चमत्कार देखा देगा, सिद्ध हो जाएगा तो श्रोत्रिय है। शास्त्र ज्ञान है करके नहीं जान सकते। अब ब्रह्मनिष्ठ की बात है क्या कहना? ब्रह्मनिष्ठ कौन है? जिसके पीछे करोड़ों लोग है वही ब्रह्मनिष्ठ है? ऐसा नहीं, ऐसा हो तो फिल्म में नाचने वाले क्रिकेट खेलने वाले ब्रह्मनिष्ठ के बन जाएंगे। बताते अभी बोलना नहीं। प्रश्न किया कैसे, जिसको गुरु नहीं मिले क्या ब्रह्मनिष्ठ पहले मालूम हो तो गुरु करना, गुरु कैसे मालूम होगा, कहाँ अज्ञानी को कैसे मालूम होगा? अश्रुति कहती है इसे गुरु के पास जाए, श्रुति वाक्य तो व्यर्थ नहीं होगा। श्रुति कहती है और उस अज्ञानी को मालूम नहीं के ब्रह्मनिष्ठ कौन, किसके पास जाए? कोई अधिकारी, कोई जिज्ञासु ऋषिकेश में जाकर के किसी महात्मा, किसी कोई ज्ञानी महापुरुष थे उनके पास जाकर पहुंचा, बोला हम एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के अन्वेषण में, आप हमको किस कृपा कर सकते हैं? किससे पूछ रहा है? जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी है वो कहेंगे हाँ मैं ब्रह्मज्ञानी, तुम मेरे पास आ जाओ। जो नहीं है कह देगा बताए तुम ऐसे किसी को नहीं कहो, जाओ करके जा करके ऐसे कोई ना कोई ब्रह्मज्ञानी हम कह करके तुम उठा लेंगे तो क्या करेंगे? करना चाहिए तो तुम यहीं तपस्या करो, भगवान का भजन करो, परमात्मा की कृपा होने पर ही तुमको ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हो जाएंगे। फिर बोला हमने तो बहुत भजन किया, बहुत ढूंढे कैसे मिलेगा, कहाँ जाएंगे? बोले हाँ हिमालय में जरूर ब्रह्मज्ञानी है और जरूर मिले कि तभी मिलेंगे जो ईश्वर कृपा करेंगे। बहुत बड़े बड़े विद्वान ने विचार किया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के लिए श्रुति का निर्देश है, ब्रह्मनिष्ठ क्या मालूम नहीं है और अज्ञानी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, क्या किया जाएगा? फिर वो श्रुति वाक्य सार्थक कैसे होगा? नहीं तो श्रुति वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए और अज्ञानी ढूंढता है, ज्ञानी के पास जाकर पूछता है मैं ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहता हूं, क्या कहेंगे? परमात्मा की कृपा होने पर मिल जाएंगे, इतने कह देते हैं। ऐसे बहुत लोग कहीं ज्ञानी के पास गए ऐसे कहें तो क्या करेंगे? तो फिर कैसे वाक्य सार्थक होगा? ये मानना ही पड़ेगा परमात्मा की कृपा होने पर ही उचित गुरु की प्राप्ति उचित शिष्य को होती है, उसके बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं, परमात्मा ही प्राप्त कराते हैं, परमात्मा ही प्राप्त कराते हैं जब समय होता है जिसको। इसलिए पहले चार कृपा में से पहला आत्म कृपा, अपने प्रयत्न कुछ करे, भजन करे तो ईश्वर कृपा होती है। ईश्वर कृपा होने पर ही आगे ईश्वर क्या करेंगे? सद्गुरु की प्राप्ति कराएंगे। ईश्वर कृपा ही होने से ईश्वर सद्गुरु को प्राप्त कराएंगे। अच्छे अच्छे साधक विरक्त जाते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति महात्मा के पास कोई बता दिया, लेकर किसी से बन गया, बाद में देखा ये तो बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत मैरमुख है। शिष्य जो बनने के लिए गया वो तो अंतर्मुख है, और जिनको गुरु मानने लगा देखा तो कभी तो चिल में लेते हैं तो कभी तो क्या करते, बाद में देखा छोड़कर फिर भाग जाता है, क्या करेगा? और कोई श्रद्धा से सोता है गुरु मान लिया किसी छोड़ देंगे पाप होगा, छोड़ना मुश्किल, धर्म संकट में आ जाता है। फिर कोई किस मार्ग में चला गया, मार्ग भी अलग अलग मार्ग वाले, कितने मार्ग अलग अलग मार्ग, किस मार्ग में कोई पहुंच गया गुरु मान लिया, अब कुछ दिन रह गया ये अपना मार्ग समझ लिया, बाद में दिखता है ये मार्ग से अलग अलग मार्ग है किंतु अपने मार्ग छोड़ नहीं पाता है, दूसरे मार्ग में जाना मुश्किल होती है। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए किंतु गलत मार्ग में चला गया, किस किस का दुराग्रह हो जाता, हमारे मार्ग ठीक है, आगे कहीं सत्संग सुनने पर पढ़ने पर भी ग्रहण नहीं कर पाता है, कोई छोड़ नहीं पाता है, कोई छोड़ता है तो फिर बाद में भटक लेता है कभी इधर कभी उधर। बड़े परमात्मा की कृपा के बिना सन्मार्ग में कोई ठीक मार्ग में पहुंचना मनुष्य के लिए बड़े कठिन है, बहुत कोई उपाय नहीं, क्या कर सकता है? तो जब यदि सद्गुरु की प्राप्ति किसकी होती है, किन दुर्लभम सद्गुरु त्रिलोके। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, और भगवान शंकराचार्य ने कहा सद्गुरु दुर्लभ है। गुरु भगवान कहते गुरु नहीं सद्गुरु, गुरु उपदेश मंत्र देने वाले बहुत ही, सद्गुरु जो ब्रह्म निष्ठ गुरु दुर्लभ है, तो भी परमात्मा की कृपा से ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जिसको नहीं मिलता है वो भगवान के भजन करे, भगवान के शरण में रहे, सन्मार्ग में चले, तो अवश्य ही परमात्मा उसको उचित समय पर उचित गुरु की प्राप्ति कराएंगे। तो अभी पहले अर्जुन विषाद योग में इसे कहा गया, तो दुखी होने पर सब गुरु के पास जाए, विचार करके जब देखा संसार में सुख नहीं है, संसार में जो कुछ देख नित्य फल सब चाहते हैं, नित्य सुख सब चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं जरूर, और सुख कोई अनित्य सुख नहीं चाहता, नित्य सुख चाहता है। मैं बोलता आया था पहले, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, कितने व्यक्ति आप लोग में राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? कभी सोचते हम राष्ट्रपति बन जाए? सो तो संभव नहीं, क्या जरूर क्या जरूर, प्रश्न ही नहीं, बहुत लोग संभव नहीं। अब कोई संभव है तब जो थोड़ा थोड़े इंजन की संभावना कोई मानते, फिर भी वो छोड़ दे, चलो राष्ट्रपति क्या कोई मंत्री बन जाना भी कठिन नहीं है, चलो राजनीति में जो ऊपर स्तर वाले मानेंगे। राजा महाराजा बनना नहीं चाहते हैं, अच्छा रास्ता में कोई लेटा हुआ मांगने वाला, उसको पूछा तुम सुख चाहते हो क्या? क्या सुख चाहिए चाहिए ना नहीं चाहिए? आप सुख चाहते हैं ना नहीं? हाँ, सुख दिन में सुख और रात में दुख मिले ऐसा चाहते हो? तो रात में सुख मिले दिन में ही चाहते हो, रात में सुख मिले दिन में दुख मिले ही चाहते हो क्या? सुबह सुख मिले शाम को दुख मिले ये तो चाहते हो नहीं? तो शाम को सुख मिले और सुबह दुख मिले चाहते हो? तो किस समय दुख चाहते हो? कभी दुख नहीं, सुख ही सुख मिले। और एक स्थान में बॉम्बे में तो सुख मिले, ऋषिकेश चल जाए तो दुख मिले चाहते हो? अच्छा ऋषिकेश जाए सुख मिले किंतु अन्य कहीं स्थान गए तो दुख मिले चाहते हो? तो किस स्थान पर आप दुख चाहते बोलो? सब स्थान पर सुख चाहते है। अच्छा एक ही व्यक्ति से तो सुख मिले, दूसरे व्यक्ति से दुख मिले? एक ही व्यक्ति से सुख मिले, दूसरे से दुख मिले, कोई चाहता है क्या? जाए क्या चाहते हो? मनुष्य से सुख मिले, पशु से दुख मिले चाहते हो? अच्छा मनुष्य पशु से सुख मिले, मच्छर से दुख मिले चाहते हो? किस से दुख आप चाहते हो? किसी से दुख नहीं चाहे, किसी देश में नहीं चाहिए, किसी काल में नहीं चाहे दुख। सुख किस समय चाहिए? सब काल में। किस देश में सुख चाहिए? सब देश में। किस व्यक्ति से सुख चाहिए? देश काल और वस्तु, सारे देश में सारे काले सारे वस्तु से सुख चाहते हैं। देश परिच्छिन्न सुख कोई चाहता है? एक देश में मिले अन्यथा नहीं मिले चाहते हो? काल परिच्छिन्न दुख कोई चाहता है? कभी सुख मिले कभी नहीं मिले। वस्तु परिच्छिन्न होता है, एक से सुख मिले दूसरे से नहीं मिले। आप क्या चाहते हो? देश काल वस्तु परिच्छिन्न सुख चाहते हो? हाँ, देश काल वस्तु परिच्छिन्न सुख कोई चाहेगा? अपरिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न नहीं हो, काल परिच्छिन्न नहीं हो, वस्तु परिच्छिन्न नहीं हो। ये शब्द सुनकर डरना नहीं, देश परिच्छिन्न का देश में सीमित हो, किस देश में किस में नहीं तो परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न हो गया सीमित हो गया। काल परिच्छिन्न नहीं हो, किस काल में किस काल में नहीं, वस्तु परिच्छिन्न किसी वस्तु से है किसी नहीं, ऐसा सुख कोई नहीं चाहता है। सब चाहते सब काल में सब देश में सब वस्तु सुख। अच्छा आप चाहते हो ऐसे सुख? कोई चाहते ऐसे सुख? ये सुख परब्रह्म प्राप्ति के बिना नहीं है। अच्छा इसको छोड़ दो, जो सामने भीख मांगा उसको पूछो तुम सुख चाहते हो ना नहीं, क्या वो चाहेगा? नित्य सुख चाहेगा कभी? भीख मांगा भी दुखी बहुत है, नित्य सुख चाहेगा या कहेगा कि थोड़ा थोड़ा दुख मिले करके? कोई चाहेगा? उसको पूछो सुख सब चाहते, देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं अपरिच्छिन्न, सब देश में सब काल में सब वस्तु में सुख मिले, ऐसा कोई चाहता है? सब चाहते हैं, सब चाहते ना नहीं? देखो राष्ट्रपति बनना सब चाहते हैं, चाहते सब नहीं चाहते। कितने लोग हैं राष्ट्रपति? वो बोले राष्ट्रपति क्या हम पता नहीं, राष्ट्रपति शब्द क्या? राष्ट्रपति जानते क्या? राष्ट्रपति क्यों कहते हो? राष्ट्रपति कितने बन जाते हैं? किन्तु ऐसे सुख सब चाहते हैं, चाहते ना नहीं? तो ये सुख क्यों चाहते हैं, इसमें आपका अधिकार है और आप प्राप्त कर सकते हैं। ये संभावना है, यहां से आकाश में छलांग लगा करके उड़ जाए चंद्र को, कितने बार आप चीचा कर तो चाहते हो। किसने कभी आप लोगों ने सोचा मैं यहां से छलांग लगाकर चंद्र में चल जाऊं, अथवा यहां से छलांग लगाकर ऋषिकेश पहुंच जाए, कोई चाहते कभी? कभी संभव नहीं। अथवा यहां से छलांग लगा करके हम समुद्र पार कर ले, चाहते कभी नहीं? क्यों नहीं? वो संभावना नहीं। किंतु हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं हमेशा हमको सुख मिले, सब काले में सब देश में सब से सुख मिले, चाहते ना नहीं? चाहते तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये संभव है। समुद्र लांग कर छलांग लगाकर नहीं जा सकते है, यहां से छलांग लगाकर चंद्र नहीं पहुंच सकते, इच्छा नहीं करते, राष्ट्रपति बनना संभव नहीं होता है। यहां से ऋषि के छलांग लगाकर नहीं जा सकते, किंतु देश काल वस्तु अपरिचिन्न सुख प्राप्ति की इच्छा होती है, चाहते हैं, इसलिए आपका अधिकार है, आप प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चलने पर प्राप्त होगा। इसलिए गुरु के पास जाने पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा की कृपा से। और गुरु का उपदेश काम करेगा अपने में योग्यता हो। ब्रह्मनिष्ठ गुरु तो चाहिए, अभी शिष्य कैसे होना चाहिए? शिष्य भी ऐसे योग्य होना चाहिए जो गुरु उपदेश ग्रहण कर सके। कोबा गुरु रियो हितोपदेष्टा, हितोपदेश करने वाले गुरु है। शिष्यत्व को यो गुरु भक्त है, वो गुरु भक्त, भक्त का तो गुरु की आज्ञा पालन करे तभी भक्त। यानी कि हम बड़े भक्त हैं, भगवान की आज्ञा पालन नहीं करेंगे, भक्त बन करके कथा तो सुनेंगे नाचेंगे कूदेंगे, और भगवान क्या कहते उसको नहीं सुनेंगे, करे पालन करना तो कठिन है, सुनेंगे भी नहीं। गीता कौन कौन कहेगा? गीता का उपदेश करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना, उसको सुनने की इच्छा नहीं करने की दुरूप की बात है। और मेहंदी लगाना नाचना कूदना करने के सब तैयार हो जाएंगे, और उसको सुनने के लिए, सुन करके करने के लिए नहीं, ये भक्त नहीं। जो भक्त है आज्ञा पालन करना पड़ता है, सबसे बड़ा है सही, जो अनुशासन पालन करे। तो विषाद होने पर, संसार से वैराग्य होने पर ही उपदेश काम करता है। इसे पहले अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ प्रथम अध्याय, अभी द्वितीय अध्याय प्रारंभ होगा। ये सांख्य योग, एक सांख्य दर्शन है, छह दर्शन में, छह दर्शन में से कपिल के सांख्य दर्शन वो अलग है। यह सांख्य योग है, संख्या का अर्थ ब्रह्म विद्या, सम्यक ख्यायते ब्रह्म विद्वी सम्यक ख्यायते अनया, संख्या है ब्रह्म विद्या, तद यद अदृश्य इत्यादि वाक्य, उनके द्वारा जो ब्रह्म विद्या के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जाता है वाक्य श्रुति वाक्य के द्वारा, वो सांख्य ब्रह्म निर्विशेष परम ब्रह्म। सांख्य शब्द का अर्थ निर्विशेष परम ब्रह्म, तत्संबंधी विद्या है सांख्य योग। तत्संबंधी योग को सांख्य योग कहते, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म निर्विशेष पर ब्रह्म विषय योग को सांख्य योग द्वितीय अध्याय है। अथ द्वितीयोध्याय संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट वश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः रुको जा, ये संजय वाच भगवान वाच, इसको पहले बोल कर बोलना। हाँ बोलो, संजय उवाच तं तथा न कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। जिसे अथ द्वितीय अध्याय में अथ अथ कोई को बोलते अशुद्ध है, अथ अथ द्वितीयोध्याय, अथ में अ को गुरु करना पड़ेगा, द व द्वि कैसे बोलेंगे? अथ द्वितीयोध्याय बोलो, यहां अध्याय तो अ था किंतु यहां संधि होकर अ उसमें मिल गया है, इसे अध्याय नहीं बोलना, द्वितीय अलग कर दो फिर अध्याय अलग हुआ शुद्ध हो जाएगा। जैसे लिखा अथ द्वितीयोध्याय, ठीक इसी प्रकार संजय उवाच, हाँ संजय के बाद थोड़े रुक जाने है। संजय उवाच उवाच में छ क्या गया है उवाच ऐसा नहीं बोलना, कोई के उवाच कर देते नहीं। संजय उवाच, संजय ने कहा, किसको कहा, कहा संजय ने हैं धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र बैठे, धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहते, एक श्लोक बोल दिया सारी गीता में, किंतु सुन रहे हैं, एक बार पूछ लिया तो सुन रहे, सुन रहे, और कहा बीच बीच में थोड़े थोड़े छोड़ देते हैं, एक दिन सुना एक दिन छोड़ दिया, ऐसे क्या धृतराष्ट्र ने एक अध्याय सुना एक अध्याय छोड़ दिया, एक श्लोक छोड़ दिया, पूरा पूरा पूरी पूरी सुनते, एक बार पूछ लिया तो पूरी पूरी सुनते हैं। तं तथा कृपयाविष्टम, कृपा से आविष्ट, इस प्रकार कृपा से, कृपा उसमें प्रविष्ट हो गई, किसे में प्रविष्ट हो गई, अर्जुन में। वो कैसा उस समय था, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रु से पूर्ण, अश्रुपूर्ण आंसू भर या आंख में उसे आकुल अंश भर जाने पर दिखना बंद हो जाएगा, चक्षु से लोतक आंसू भर जाए, आंसुपूर्ण से आकुल है इच्छण चक्षु जिसका, ऐसा जो अर्जुन आंख भर गया दिखता नहीं, और उस समय विषीदंतम बड़े विषन्न विषाद दुखी बहुत दुखी होकर के, क्योंकि पहले आ गया आश्चर्य हो गया, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम, अंत में कह रहे है एवं मुक्त अर्जुन रथोपति बैठ गया, धनुसर को छोड़ करके मैं युद्ध नहीं करूंगा, शोक संविघ्न मान से पहले आया था, रो रहा है दुखी होकर के, ऐसी अवस्था में स्थित है, भगवान ने देखा एदम वाक्य मधुसूदन उवाच, भगवान श्री कृष्ण देखे प्रिय भक्त देखा बड़े कैसे अवस्था है, मधुसूदन भगवान ने कहा, मधुसूदन तो सबको मालूम है, मधु नाम को असुर को मारा था मधुसूदन हुआ था, मधु नाम को असुर को माल से मधुसूदन हुआ था ना, और मधु क्या है मालूम, मधु जैसे बड़े स्वादिष्ट अच्छा है प्रिय है ना, इसे मधु के समान है इष्ट है अहंकार, जो अहंकार है ना ये मधु जैसे, मधु सब को प्रिय है ना, नहीं इसी प्रकार अपने अहंकार बड़ा प्रिय है, मैं हमने कहा मैंने किया अपने बड़ा मान, जो अहंकार है मधु जैसे बड़े प्रिय है, मधुवत इष्टम जैसे मधु इष्ट है, अहंकार बड़ा इष्ट है, उसको नाश करने वाले भगवान है मधुसूदन, किसको नाश करने वाले, मधु के समान अहंकार को नाश करने वाले मधुसूदन है, इसलिए उनके शरण में जाओ तो भगवान अहंकार को समाप्त करेंगे, अहंकार को समाप्त करने वाले आपके उपकार के है या आपके अहंकार को पुष्ट करने वाले उपकार के है, हाँ ऐसे देखे ना, कोई यदि थोड़े बड़ा बड़ा चढ़ा कहा था बहुत अति संत तो उनके पास जाएंगे, और कोई यदि अहंकार को नष्ट कर देता है तो खराब लगता है, अहंकार को नाश करता है तो खराब लगता है जरूर, परमात्मा भी अहंकार को नाश करते, साधु महात्मा भी अहंकार को खत्म करते, अहंकार को नाश करते, अहंकार को नष्ट करना चाहिए, भगवान का नाम मधुसूदन, इसलिए मधुवत अत्यंत इष्ट, अहंकार को नाश करने वाले भगवान है मधुसूदन, और अहंकार को कैसे नाश करेंगे, अहंकार को नाश कैसे करेगा, अपने स्वयं प्रकट जो हो जाते हैं आत्म प्रकाश है ना, अपने प्रकाश रूप हो जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, और स्वरूप आनंद आत्म प्रकाश करके क्या करेंगे, स्वरूप आनंद का स्पष्टीकरण अपरोक्ष कर देते हैं, मधु शब्द का अर्थ आनंद है, प्रिय होता है आनंद, स्वरूप आनंद ये तो मधु हो गया, दूसरा स्वरूपानंद, स्वरूपानंद को प्रकट कर देते हैं स्वयं, कौन भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण क्या करते, स्वरूपानंद को अपने अपरोक्षत्व ने स्पष्ट कर देते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान, तो स्वरूपानंद को प्रकट करने वाले भी मधुसूदन, सोदय थी कहते अपने स्वरूपानंद को स्फुर प्रकट कर लेते हैं, स्वरूपानंद को प्रकट करने वाले भी मधुसूदन है, जब प्रिय भक्त है उसके स्वरूप आनंद को स्वयं प्रकट कर लेते हैं भगवान मधुसूदन, इसे संजय कहते मधुसूदन कहने से यहां असुर को मारा था अभी पाप को नष्ट करेंगे, असुर बुद्धि को समाप्त करेंगे अर्जुन के, और अहंकार को समाप्त करके ज्ञान उपदेश करके अपरीक्षित साक्षात्कार कर देंगे मधुसूदन, मधुसूदन क्या करते हैं, पहले पाप शत्रु को नष्ट करें, पहले अपने में जो कचड़ा है उसको हटाओ, दुर्गुण है उसको हटाओ, पाप है राग द्वेष उसको छोड़ो, उसके बाद शौच छोड़ने के बाद ये अहंकार हो जाता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अहंकार नष्ट हो जाएगा तो परमात्मा का दर्शन प्रकट होता है। मधुसूदन भगवान इसे क्या करेंगे, पहले साधक भी इसे करना पड़ता है, अपने दुर्गुणों को अपने आप देख करके हटाए, एक साथ नहीं हटता है, थोड़े थोड़े कमती करते करते हटाना पड़ता है। अभी हटाओ कभी हटाओ, बिना हटाए भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। और दुर्गुण को हटाने पर ही आगे अहंकार, आपका अहंकार आपको दिखेगा। जब दोष बहुत है ना, अहंकार इतने अधिक लगता है तो अपने अहंकार दिखता नहीं, उस समय हटाने क्या चाहेंगे, उस समय तो अच्छा लगता है, मधु जैसे बड़ा अच्छा लगता है, कोई बाबा कर दिया तो बड़ा अच्छा लगता है कि, तो इसलिए पहले अपने दोष हटाए, अपने दोष दृष्टि करे, दोष हटाए, बड़ा अच्छा लगता है दूसरे में संसार में दोष दे करके, उसके दोष उसका दोष ये विचार करने में बड़े बुद्धि काम करती है, अपनी दोष देखने के लिए बुद्धि काम नहीं करती है। तो दोष पहले निकाले, दोष दृष्टि मधु रूप असुर को हटाने पर फिर ये मधु जैसे प्रिय होता अहंकार, वो अहंकार को नष्ट करे तो परमात्मा प्रकाश होते, इसलिए अहंकार को नाश करना। त्यज धर्म मधर्मांच उभय सत्यानिते त्यज, उभय सत्यानिते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत् त्यज। धर्म अधर्म तो छोड़ो, बाद में धर्म को भी छोड़ने के लिए कहा गया। कोई समय जो संसार से वैराग्य हो जाए तो सब छोड़ कर परमात्मा शरण में, उभय सत्यानिते त्यज, मिथ्या छोड़ो सत्य भी तोड़ो, झूठ नहीं बोलो, सच ही बोलना जरूरत नहीं, बोलते हम सच बोलते क्या जरूरत है बोलने का, जब आवश्यकता है बोलो, किसके कुछ ना कुछ बोलेंगे, मैं झूठ नहीं मैं सच बोलता हूं, सच होने पर ही उसको सत्य नहीं कहते, जी किसका अप्रिय किसको दुख देना कोई जरूरत नहीं। उभय सत्यानिते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज, जिस अहंकार के बल पर सब को छोड़ा, अंतिम उस अहंकार को छोड़ो, अहंकार से सब कुछ छोड़ सकते हैं किंतु अहंकार को छोड़ना पड़ता है। योगवासिष्ठ में से कथा है, कथा क्या आख्यायिका है, राजा शिखित ध्वज, रानी है चूड़ाला, रानी है ब्रह्मज्ञानी विदुषी, रानी उसको राजा को सिखाती, इसे तो सारा जीवन चले गया, अपने मनुष्य जन्म मिला सार्थक करो जीवन को, ऐसे तो समाप्त हो जाएंगे। तो वो बोलता है ये रानी क्या हमको उपदेश करती, रानी हमको ये अपने पत्नी क्या उपदेश करती, चूड़ाला ने देखा मैं उपदेश करने पर ये तो ग्रहण करने वाले नहीं है, उसको सिखा सिखा कर कहा तुम जाकर जंगल में तपस्या करो, बहुत इतने कहा कि तपस्या करो, बिना तपस्या कुछ नहीं होगा, ऐसे क्या सारा जीवन, किसी प्रकार उसको उपदेश ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करके कहा गया जंगल में जाकर तपस्या करो, जंगल में जाकर तपस्या करने राजा सब छोड़ करके, रानी चूड़ाला योगी नहीं थी, योगी योग्य अभ्यास करती थी, एक ब्रह्मचारी वैसे में वहां प्रकट हो गया, आखिर पूछा रहे तू कौन है, यहाँ जंगल में क्या आता है, कहां से आया, डांट कर बोला मैं राजा आया, यहाँ क्यों आया तपस्या करने के लिए, बोला ये क्या तपस्या कर गया, ऐसे सब छोड़ना पड़ता है, मैं बोला हमें राज्य छोड़ दिए सब छोड़ दिए कुछ नहीं, सर्वत्याग करना पड़ेगा, फिर बोला सर्वत्याग करना पड़ा, उनमें क्या है झोपड़ी बनाए रहने के, चल झोपड़ी को मैं जला दूंगा, थोड़ा लंबा प्रसंग है, झोपड़ी को जला दूंगा, फिर दूसरे दिन आए बोले यो होता है ये क्या है, सब पूरा त्याग करना पड़ेगा, सर्वत्याग के बिना नहीं प्राप्त होगा, क्या तपस्या करेगा, सर्वत्याग, फिर और क्या है, कमंडल ले कुछ मेरे पास कपड़ा है कुछ है इसको चलो फेंक दूंगा फेंक दिया, उसके बाद फिर ब्रह्मचारी अगर बताया कुछ नहीं हुआ सर्वत्याग, फिर और क्या रहा, सब छोड़ दिया, देखो मेरे पास और कुछ नहीं, बोला सब कुछ नहीं हुआ ये अहंकार को रखकर बैठा है, ये अहंकार को छोड़ो, मैंने राज्य छोड़ दिया, मैं इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तुम कौन हो, किसको तुम छोड़ा, क्या छोड़ा, तुम्हारा क्या है तुम छोड़ा, तुम्हारा अपना है तो मैं क्या छोड़ दूंगा, ये यदि मेरा है तो मेरे पास है मैं इसको फेंक दूंगा छोड़ दूंगा, और बहुत तो बड़े मकान है कहेंगे यही मकान में छोड़ दिया, बॉम्बे में आया हमने जितने देखा बड़े बड़े मकान है करोड़ करोड़ रुपया के मकान सब हम छोड़ दिया, छोड़ क्या दिया, वो तो हमारा यही नहीं, हमारा ये तो छोड़ना है, तुमने किसको छोड़ा क्या छोड़ा आप बताओ, आपने क्या छोड़ा, क्या छोड़ पाओगे, अपना कुछ हो तो छोड़ना है, अपना क्या है, क्या है अपना, ब्याग
अपना क्या है, जो लेकर आए वो अपना, जो लेकर आए तो पुण्य पाए वो भी खत्म हो जाता है, उसको भी होकर द्वारा खत्म कर लिया और क्या छोड़ोगे। और जो पुण्य पापी जन्म है क्या उसको छोड़ नहीं सकते हो, वो आपको पकड़ कर लेगा। जो कर्म क्या है वो पेशे जकड़ कर अंदर है, वो पकड़ कर लेगा, कौन क्या छोड़ सकता है। इसलिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है, सबसे बड़ा है। मधुसूदन भगवान है अहंकार को नष्ट करने वाले, ये उपदेश करेंगे, संजय सूचित कर देता है अर्जुन भगवान को उपदेश करेंगे। श्लोक बोलो।
संजय उवाच तंत्र था श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमसर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। मकृति को लंबा नहीं करना, कोई बोलते समकीर्ति करम अर्जुन, ऐसा नहीं। मकीर्ति करम अर्जुन मर्जुन, यहाँ गुरु चान होगा कि लंबा करना। मकीर्ति करम अर्जुन मकीर्ति करम अर्जुन, हाँ मकीर्ति लंबा नहीं करने का है। देखो प्रथम आधा में कुतस्त्वा कस्मल मिदंग अनुस्वार है, विषम में समुपस्थित में अंत में मकार है श्लोक में, अंत में मकार है क्योंकि हम विराम पुनः विराम है, पुनः विराम से अनुसार नहीं होता मकार हुआ, किंतु बीच में कस्मल मिदम यहां विराम नहीं है इसलिए अनुस्वार है। और ये कस्मल मिदम को अनुसार के यदि कस्मल मिदम उष्ट लगा दिया क्या होगा, अशुद्ध हो गया। क्या बोलना चाहिए, कस्मल मिदं मिदं अहम मिदं कस्मल मिदं। समुपस्थित में उष्ट लगेगा, वहां जो दोष नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। समुपस्थित ऐसा कर दिया तो नहीं होगा, समुप उष्ट लगा करके थोड़ा नाक से निकला समुपस्थितम ऐसा ही, क्योंकि म का उच्चारण कहां से होता है मालूम है, उष्ट और नासिका, उष्ट और नाक दोनों, प फ ब भ म पांच वर्ण उष्ट से उच्चारण होंगे। और किंतु म है अनुनासिक कहते फिर नाक से भी निकलेगा, समुपस्थितम मोस्टर लगा करके फिर थोड़ा नाक से निकालो, अजी उष्ट का लगा दिया नाक से नहीं निकला तो भी मकार उच्चारण नहीं हुआ, ऐसे करके बोलते समुपस्थित तो प बोला म बोला मिल गया आगे नाक से नहीं, समुपस्थितम ऐसा बोल कर थोड़ा नाक से निकलेगा। कुतः त्वा कस्मल मिदम समुपे समुपति कहते ये कस्मल ये बुद्धि तुम्हारे ये कहां से आ गई, विषम विषम स्थान में सभय सभय स्थान में, विषम मतलब विषम में सभय भय स्थान में ये बुद्धि कहां से तुमको आ गई। कुतः त्वा कस्मल ये पाप बुद्धि कहां से आ गई, जो कि अनार्य जुष्टम आर्य पुरुष होते जो शिष्ट पुरुष आर्य उनके द्वारा सेवित हो तो आर्यजुष्ट और न आर्यजुष्ट है थी अनार्यजुष्ट, जो शिष्ट पुरुष जिसका सेवा नहीं करते निंदित है, शिष्ट पुरुष के द्वारा निंदित है ये अस्वर्गम जो स्वर्ग को हित नहीं, स्वर्ग का हित नहीं, स्वर्ग नहीं देने वाले सुख नहीं देने वाले अस्वर्गम और अकृतिकरम अकृति कराने वाले, अकृति कराने वाले स्वर्ग नहीं सुख नहीं देने वाले और शिष्ट पुरुष के द्वारा निंदित कर्म ये सो कैसे तुम्हारे में कहां से उपस्थित हो गया, अपेक्षा करने वाले स्वर्ग नहीं देने वाले ये सो कैसे उपस्थित हो गया तुम्हारे, ये कुस्तस्ता कस्मल कस्मल पाप पाप बुद्धि इसी बुद्धि कस्मल कातरता तो कस्मल का पाप है, ऐसे पाप बुद्धि कहां से उपस्थित तुमको हो गई कैसे? अर्थात तुम तो इतने शुद्ध हो, अर्जुन है, अर्जुन शब्द का तो शुद्ध आगे संबोधन है, अर्जुन तुम तो शुद्ध हो, तुम्हारे में ऐसे ही बुद्धि कहां से आ गई? विषमे सभय स्थान में यह जो आर्य शिष्ट पुरुष के द्वारा सेवित नहीं, शिष्ट पुरुष जिसको सेवन करते उसको ही पालन करना चाहिए। शिष्टाचार शिष्टों का आचार, जो शास्त्रार्थ जानने वाले शास्त्र के अनुसार चलने वाले धर्म करने वाले वो शिष्ट होते हैं, अनुशासन प्रिय उनके आचरण को करना चाहिए शिष्टाचार। तुम तो वही करते हो जो आर्य के द्वारा शिष्ट के द्वारा सेवित नहीं, शिष्ट पुरुष जिसकी निंदा करते हैं, जो स्वर्ग के हित नहीं सुख नहीं देने वाला है और कीर्तिकर कीर्तिकर नहीं होता है, ऐसे बुद्धि कहां से उपस्थित हो गई? प्रेम से कहते हैं, डांट करके नहीं। ऐसे जो रो रहा है कोई ना माचा माता पिता उसको प्रेम से कहते, ऐसा कहां से, क्या हो गया, क्यों रोता है, क्या हो गया, ऐसे क्यों सोते हो, ऐसा क्यों करते हो? श्लोक बोलना, श्री भगवान वाच व्याख्या करने पहले श्लोक में बोलता हूँ एक बात, फिर आगे बोलना। व्याख्यान के बाद जो श्लोक बोलते मिल करके बोलना, अभी इस बोलना जहां से श्री भगवान वाच से बोलेंगे सब मिलकर मेरे साथ मिलकर बोलो। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा भगवान कहते ना, भगवान धनवान कहते हैं, जिसके पास धन है वो धनवान है, ज्ञान जिसका है उसको क्या कहेंगे, ज्ञानवान। और भगवान किसको कहेंगे, जिसमें छह कहां का गया, धनवान है, कितने करोड़ धन से धनवान होगा, धन जिसके पास है धनवान, ज्ञान जिसके पास है ज्ञानवान। और भगवान किसको कहेंगे, भग जिसके पास है भगवान है, भग कितने धन कितने, बात विचार कर हिसाब करेंगे बाद में। धनवान किसको कहेंगे, 10 करोड़ से धनवान है या 100 करोड़ से धनवान, धन है तो धनवान, बुद्धि है तो बुद्धिमान है ना। किंतु वो जो मत्तु प्रति होता है वो व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं, भूम निंदा प्रशंसा सो भव अधिक कहीं हो अधिक धन होने से, 10 रुपया हो तो कहें धनवान, 10 पैसा है तो कहे धनवान, धनवान जिस प्रकार की अधिक धन होने से धनवान। इसी प्रकार भग, भग का तो ऐश्वर्य, भग जिनमें अधिक है, कितने भग है, छह भग है, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्य वैराग्यस्य तो मुख्य से शरणा भग इतिरना, ऐश्वर्य से समग्र से सारे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, धर्म सारे सधर्म सारे यश कीर्ति सारे लक्ष्मी, उसके साथ वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य, वैराग्य अर्थ मोक्ष, सब में समग्र है, संपूर्ण ऐश्वर्य हो, संपूर्ण धर्म है, सारे यश है, सारे लक्ष्मी है, और वैराग्य पूरा पूरा वैराग्य अथ मोक्षस्य। इच्छा नाम इच्छे को भग शब्द से कहा जाता है, जिसके पास ये छह वही भगवान होगा। क्या क्या, पहला है ऐश्वर्य से समग्र से ऐश्वर्य समग्र, दूसरा है धर्म संपूर्ण धर्म, तृतीय हो गया यश यश है, चतुर्थ श्री लक्ष्मी है, वैराग्य से वैराग्य है, अथ मोक्ष से मोक्ष भी, ये सर्वनाम ये छहों का नाम भग, ऐसे भग जिसके है वो भगवान, अर्थात जो भगवान है ऐश्वर्य है तो ईश्वर है, सारे धर्म है उनके पास है, सारे यश है, सारे लक्ष्य उनके है, पूरा वैराग्य है, और मोक्ष भी उनके नित्य मुक्त है, वही भगवान ने कहा। जहां इसे भगवान भगवान उपस्थित है, भगवान ही शिष्य के रूप कृपा करने के लिए सद्गुरु की प्राप्ति कराते हैं, और भगवान ही सद्गुरु से प्रकट होकर के उपदेश देते हैं, भगवान आने के पहले स्वयं गुरु रूप से उपदेश करते हैं, फिर वो भगवान प्राप्त होते हैं। इन दिशा नहीं कि भगवान सीधा आ जाएंगे, पहुंचा देते हैं। कभी चलते समय कुछ होता है, कोई प्राप्त होता है, कोई कुछ कटु वचन बोला है, उससे डांटते झगड़ा करते हैं, किंतु परमात्मा आपके अहंकार को खत्म करने के लिए कराते हैं। रास्ता में चलते हैं ना, परमात्मा अहंकार को खत्म करने के लिए किस प्रकार अहंकार को नाश करते पता नहीं चलेगा। ऐसा करे लाठी लेकर पिटाई करके नहीं, अहंकार को समाप्त करने के लिए इसी प्रकार किसी प्रकार अहंकार समाप्त कराते हैं। अहंकार समाप्त होना ठीक है या अहंकार को लेकर चलना है? हाँ, अहंकार को समाप्त करना पड़ता है। इसलिए मधुसूदन पहला है, अभी भगवान तो उसको उपदेश करेंगे आगे। कैव्यं मास्मगमः पार्थ, मिलकर बोलना, जोर से बोलना। कैव्यं मास्मगमः पार्थ, नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। बताया था ये श्लोक बोलते समय प्रमाद नहीं करना, जोर शब्द करके बोलना। अधिक जोर से बोलने से पाप निकल जाएंगे, आलस्य निकल जाएगा, तो हानि है क्या? थोड़ा जोर से बोलने से आलस्य निकल जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा, तो स्वस्थ हो जाने पर सुनाई पड़ेगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। और बोलते समय आलस्य होगा तो सुनते समय तो नींद लगेगी। बोलते समय कम से कम आलस्य छोड़े, ऐसा बोलना जोर करके शब्द भगवान जैसे सुन ले। भगवान सुन ले तो हानि है क्या? कैसे डरते कि भगवान सुन ले, इसे छिपा कर बोलना, शर्म लगता है भगवान से। नहीं, भगवान को सुनाने के लिए बोलना है, दूसरे को सुनाने का नहीं। हाँ बोलना, अभी मिलकर बोलो मेरे साथ। क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ, नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। यहां पहले से देखो, ये गीता में एक बार भगवान ने कहा था, उवाच पश्चेतान समवेतान कुरुनीति, पश्चेतान समवेतान कुरुन, ऐसे कहा था। इतने वो भी साक्षात भगवान ने नहीं कहा था, संजय ने बोला, ऐसा भगवान ने कहा। यहां भगवान गीता शास्त्र में पहले भगवान का वचन है, समझे? से गीता शास्त्र में गीता आचार्य वक्ता है, भगवान है, किन्तु उनका वचन साक्षात यहीं से शुरू हुआ, प्रथम अध्याय में नहीं। प्रथम अध्याय तो थोड़ा इतने ही कहता, उवाच पश्चेतान समय वितान, इतने जो कहा था उसको साक्षात और संजय बोला था, भगवान स्वयं कहते। इसीलिए पहले द्वितीय श्लोकों को सब लोग बोलेंगे मेरे साथ मिलकर के, ये भगवान का प्रथम वचन है। हाँ, मेरे साथ मिलकर बोलना और जोर से बोलना। श्री भगवान उवाच, बोले सब लोग, नहीं नहीं मेरे बाद नहीं, मेरे साथ मिलकर बोलना। मैं बताया जो व्याख्यान हो गया उसके बाद मिलकर के बोलना। हाँ बोलो। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम स्वर्ग्य मकीर्ति करमर्जुनम्। आगे श्लोक बोलना। क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ, नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, पिता का पुत्र पार्थ, क्लैव्यं मास्मगमः, क्लीबता को प्राप्त नहीं करो, कातरता को प्राप्त नहीं करो, कातर नहीं हो। क्लीबस्य भाव क्लैव्यं, क्लीब कातर हो जाता है, भय से डर करके जड़ हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्लीब नपुंसक को कहते जिसे नपुंसक हो जाए, ऐसा नहीं। नहीं तो त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे में ये युक्त नहीं, क्योंकि तुम कौन हो? राजधर्म को जानने वाले, युद्ध में पंडित हो, कुशल हो, तुम्हारे में ये तो उचित नहीं है। हाँ ऐसे उचित है, अन्य किसके लिए कोई रोता है, हाथ पर किसका कांप गया, कोई रोता है, ये तो संभव कोई होते हैं, तुम्हारे में तो ये ठीक नहीं। नेता त्वय तुम्हारे में ये ठीक नहीं है, त्वही मतलब तुम तो राजधर्म को क्षत्रिय धर्म को जानने वाले और युद्ध में कुशल रण पंडित, तुम्हारे में तो उचित नहीं है। हे परम तप परम परम ताप परम तप, पर है शत्रु को तप कष्ट देने वाले, शत्रु को डराने वाले, तुमसे तो शत्रु डर कर भागने वाले है। तुम हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, जो छोटापन है हृदय में बुद्धि में दुर्बलता है इसको छोड़ करके उठो, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ और बैठेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्षुद्रम हृदय दुर्बल क्षुद्र नीचपन, हृदय के बुद्धि में जो दुर्बलता है इसको छोड़ करके तैयार हो जाओ, तुम्हारे में ठीक नहीं है। इस श्लोक फिर बोलना, क्लैव्यं मा अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन नहीं अर्जुन, क्या है नाम है, अर्जुन नहीं अर्जुन उवाच, यहां अर्जुन न बोल करके थोड़ा अ करके फिर उवाच कहा। हे मधुसूदन कथम अहम संख्ये भीष्मंच द्रोणंच इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहो, अहम संख्ये पूजा रहो भीष्मंच द्रोणंच, दो का नाम लिया जो पूज्य है पूजा के लिए योग्य है, भीष्म पितामह द्रोण आचार्य गुरु, अहम संख्ये युद्ध में भीष्मं द्रोणंच पूजा रहो, दोनों पूजा के योग्य पूजनीय पूज्य है, उनको ईशु भी प्रत्योष्यामि, जब उनके लिए शब्द से भी थोड़ा कुछ नहीं कहना चाहिए, बाण लेकर के उनके विरुद्ध में कैसे मैं युद्ध करूंगा। हे मधुसूदन हे अरिसूदन कहकर दो बार संबोधन, कोई विद्वान कहते शोक व्याकुल होने के कारण दो बार बार संबोधन दो बार कर दिया, एक ही वाक्य में दो बार कर दिया, और मधु को नाश मधुसूदन आप नष्ट करने वाले, अरि कुमार शत्रु को नाश करने वाले, मेरे में जो पाप है उसको नाश आप करिए, आप ही करेंगे, आप बताइए मुझे ये क्या मेरे में क्या गलती है, क्यों ऐसे होता है, और ये नहीं कि ये मैं जो कर रहा हूं जो बोल रहा हूं ये अनुचित आप कहते मानता है, किन्तु मैं कैसे करूंगा आप बताइए, ये तो पूज्य ही है, पूज्य है भीष्म और आचार्य, उनको मैं लड़ूंगा जो लेकर के धनु लेकर के। शास्त्र में कहा गया गुरु हूं कृत्य त्वं कृत्य विप्रम निर्विजित्य वाजत, स्मशान जायते वृक्ष गृध्र कंकादि सेवित, गुरु को हूं कर दिया त्वम कह दिया तो ब्राह्मण को बाद से परास्त कर लिया तो पाप होता है, स्मशान में पेड़ हो जाएगा जिसमें गृध्र आदि गीध होते हैं ना, स्मशान के पेड़ में गीध बैठते हैं, स्मशान में कोई पेड़ बन जाएगा, जो पेड़ है वो भी कभी मनुष्य थे, मालूम है पेड़ भी जीव है वो भी कभी मनुष्य थे, अभी पेड़ कैसे हो गए, उनके कर्म के कारण पाप कर्म से पेड़ बन गए, पेड़ भी दीर्घ काल कोई रहे तो कोई जल्दी नष्ट हो जाते हैं, अभी जो मनुष्य उसमें से कितने पेड़ बनेंगे, जो पेड़ है उसमें से कोई मनुष्य बन सकते, ये सब सारा ये पेड़ जो होते हैं, किंतु गुरु का जो तिरस्कार करता है तो ऐसे पेड़ हो जाता है जिसमें गिद्ध आदि बैठते हैं, अत्यंत अपवित्र। कोई पेड़ होता है फूल फल देने वाले लोग उसको पालन करते, कोई सुगंध देने वाले, कोई फल देने वाले, छाया देने वाले, किंतु श्मशान में जो वृक्ष है वो गिद्ध बैठने वाले। तो गुरु की निंदा ऐसे, जो ऐसी प्रकार आचार्य गुरु है, पूज्य है, बाणों से उनके साथ युद्ध में कैसे करूं? श्लोक बोलो। अर्जुन उवाच कथं इसमें चतुर्थ पाद क्या है बोलो? चतुर्थ पाद क्या है? पूजा रहा वरिशूदन। इसमें कितने पद है? कितने? दो पद है, पूजार हो अरिशूदन, अरिशूदन एक पद है और पूजार हो संख्ये। वो वित्पत्ति तो समय ख्याये थे यानी संख्या शब्द, यहाँ संख्या शब्द है, संख्या शब्द है, ये तो युद्ध में प्रसिद्ध संख्या में युद्ध में संग्राम में। आगे देखा गुरु नहत्वा हि महानुभावान, श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरुन अहत्वा नहीं मार करके, हत्वा का तो मार करके, अहत्वम तो नहीं मार करके, महानुभावान जो महानुभाव महानुभाव महत् पूजनीय है, श्रेष्ठ है, हुई प्रसिद्ध है, शास्त्र प्रसिद्ध है, ही का तो प्रसिद्ध महानुभाव जो गुरु है उनको नहीं मार करके, अच्छा तो है यह लोके भैक्षम भोक्तुम श्रेय, भीख मांगकर खाना अच्छा है, गुरुजन को मानने के अपेक्षा नहीं मार करके अच्छा है कि जाए भिक्षम भुक्तुम श्रेय, भिक्षा करके रहना अच्छा है। भिक्षा करके रहना का अर्थ क्या है? मांगकर खाना, भले ही कुछ नहीं रहे ऐसे मांगकर थोड़ा खाकर जीवन निर्वाह करे, ये काम नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अर्थात गुरुजन को मारना है तो बहुत अनुचित, उसकी अपेक्षा भिक्ष। और ये जो भिक्ष है ये संन्यास का ही है मार्ग, ऐसे जो कहीं मांगने का नहीं, सब छोड़कर जो मांगता है तो कहता है इनको नहीं मार करके अच्छा तो है विचारण करना, क्षत्रिय युद्ध करने के लिए तैयार है, कहता है इसके अपेक्षा तो अच्छा है, ये सन्यासी साधु है ना, सम्मान के साथ कहीं भोजन मिल जाता है तो उसको भिक्षा ही कहते हैं। कलाशासन में घंटी बजते भोजन के लिए कहेंगे, महात्मा ने पूछेंगे भिक्षा कितने बजे, वहां बैठ कर भोजन मिलता है तो भिक्षा ही है, कहीं से कोई आता है तो भिक्षा ही है, भिक्षा ग्रहण, भिक्षान्न को पवित्र कहा गया शास्त्र में, किंतु भिक्षान्न में जो अधिकारी वो भिक्षान्न ले सकता है, सब नहीं ले सकते तो भिक्षान्न। अर्जुन अभी संन्यास लेने के तैयार है, शब्द से तो नहीं कहता है, किंतु राज्य सुख छोड़ करके हमें भीख मांग कर खाना रहना चाहे, जब इसी प्रकार स्थिति आ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति होने पर भी उसमें इतने बिल्कुल उपेक्षा है, ये कुछ नहीं, ऐसे क्या होगा, ये बहुत हो गया देख लिया सब कुछ है, क्या करना, उसके पीछे पड़ करके तभी परमात्मा प्राप्ति के लिए है। और बाकी थोड़ा ठीक है, भजन साधन होता है, अच्छा है, पूजा पाठ करो, बहुत अच्छी बढ़िया है, किंतु उस अर्जुन तैयार हो गया कि इसके अपेक्षा तो श्रेय कल्याण करे प्रशस्तर है, श्रेय शब्द का तो प्रशस्तर उसके अपेक्षा अच्छा है कि ये भिक्षाटन करना है, क्योंकि जब इनको हम मारे तो क्या मिलेगा। हत्वा अर्थ कामांशु गुरु नहीं वो गुरु को जन को मारेंगे तो सारे अपने अर्थ काम सब को समाप्त करके गुरुजन हिंसा करने पर क्या होगा, उसे भोग रुधिर प्रतिधान भोगान भुंजीय, जब भोग करेंगे रुधिर प्रतिधान रुधिर रक्त रक्त से रंजित रक्त से लगा हुआ रक्त से लिप्त, जैसे कोई वस्तु खाद्य उसमें रक्त लगा हुआ, छूने क्या नहीं देखने क्या हाथ लगानी चाहिए, सारे भोग जैसे रक्त से लिप्त है रक्त से रंजित है ऐसे भोग हम करेंगे। इनको मारकर जो भोग करेंगे कितने मारने पर कितने रण रक्त नदी बह जाएगी, जो कुछ भोग राज्य हमको मिलेगा जो मिले रुधिर रक्त से रंजित रक्त से लिप्त ऐसा भोग हम करेंगे। अतः रक्त से लिप्त कहने से बहुत व्यर्थ है, सामान्य रक्त कहीं लिप्त है तो उसका हाथ लगाने की इच्छा नहीं, कोई खाद्य पदार्थ तो कहेंगे उसमें रक्त से लिप्त है तो कौन खाएगा। तो ये संसार है इसी प्रकार है, सारे सब अर्थ काम सब समाप्त करके अर्थ कामान गुरु ये अर्थ काम है गुरु जन है उनको समाप्त करके मार करके बड़े महानुभाव उनको नहीं मार के भिक्षा करना चाहे, राज्य भोग जो करेंगे उसके कोई जरूरत नहीं, उनको मार करके हम जो भोग करेंगे तो रक्त से लिप्त भोग के समान है ये हमको नहीं चाहिए। श्लोक बोलो गुरु नहत्वा हि महान बाबान न चैतद विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये रुक जाओ हम मिलकर बोलो न चैतद् विद्मः न चैतद् विद्मः कतरम् न गरीयः। ये दो क्या गुरु तरह हम नहीं जानते हैं, क्या करना चाहिए हमको नहीं, विवेक काम नहीं करने पर इसे होता है। यदवा जयम यदि वा नो जय ये भी निश्चित नहीं कि हम जीत लेंगे अतः हमको वो जो लोग जीत लेंगे। यदवा जयम वयम हम जय करिए यदि वा हमको वो लोग जीत लेंगे ये भी तो मालूम नहीं। यान एव हत्वा न जिजीविषाम अच्छा हम जीत ले तो भी क्या है, जिनको मार करके यान हत्वा है वो जिनको मार करके ही हम जीवित भी रहना नहीं चाहते। अपने प्रिय कोई मर जाता है तो दूसरे व्यक्ति इतने रोता है कि हमारा भी हम भी मर जाए, जीवित रहना नहीं चाहता है, भले थोड़ी देर के लिए होता है किंतु समय से लगता है कि हम भी चले जाते हैं हम भी मर जाते, कुछ लोग कहते मर जा मैं भी मर जाऊं ऐसे कर। जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते वो प्रमुख धारतराष्ट्र तेह अवस्थित यही सामने खड़े है हमारा भाई, उनको मार करके हम तो जीवित रहना नहीं चाहते, उनसे लड़ेंगे यही तो सामने खड़े दुर्योधन आदि भाई। अपने परिवार कितने प्रिय होते, कभी युद्ध झगड़ा के समय झगड़ा नहीं तो कितने प्रिय, झगड़ा के समय तो कभी परिवार में इसे झगड़ा हो जाता है किंतु यही हमारा प्रिय, उनको मारकर हम जीवित भी रहना नहीं चाहते। इसलिए हम क्या करेंगे, वो कुछ काम नहीं करता है। अर्थात उसकी अपेक्षा ये युद्ध करके उनके माने की अपेक्षा भिक्षाटन कर रहना चाहे संसार में, ये करके क्या प्राप्त लाभ, क्या लाभ होगा। श्लोक बोलो। न चैतद विद्म कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो याने वहत्वा नमस्ते वस्तिता प्रमुखे। इसे प्रथम पाद में कितने पद बोलो, प्रथम पाद में कितने पद, सात है, न च एक हम कहते समय गिनती करना, आगे नहीं बोलना, न च एतद विद्मह कतरन नह गरियह, साथ हुआ कतरन नह, नो 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 क्या मालूम है, न मतलब हमारा, गरियह गुरुतर क्या है, विद्म हम नहीं जानते हैं। द्वितीय पद में कितने पद होगा, यदवा में यद अलग वा अलग कितने होगा, सात है, ठीक है। तृतीय पद में कितने, ठीक पांच है, ज्ञान एव हत्वा नजर, ठीक है। और जे के पाद रह गया उसको बोलो चतुर्थ में, सरल है। आगे देखो, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत्सेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अंशाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता, यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अंशाधिम। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़चेता त्वां पृच्छामि, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं किसी अवस्था में हूं, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, कार्पण्य रूप दोष से मेरा स्वभाव उपहत पीड़ित युक्त है, कार्पण्य दोष से युक्त, कृपण्य से भाव कार्पण्य, अज्ञानी को कृपण शब्द से कहा, विवेक शून्य, धर्म सम्मूढ़ चेत धर्मेण सम्मूढ़ चेत यस्य, धर्म के विषय में मोहग्रस्त भ्रांत है चित्त, जब जिस समय संसार में धर्म है, धर्म कल बताया था, धारण करने वाले धारण किया जाता है, धरती इति धर्म, ध्रियते अन्न इति धर्म करके सब को जगत का, जगत को धारण करने वाला, जिसको धारण करके कोई लेकर के जा सकता है, लेकर के क्या जा सकते हैं, धर्म, और कुछ लेकर के नहीं जा सकते, वही धारण किया जाता है धर्म, धर्मे सम्मूढ़ धर्म सम्मूढ़, धर्म के विषय में मोहग्रस्त भ्रांत, ऐसा चित्त जिसका, अर्थात मेरे वे चित्त भी मैं भ्रांत हो गया, धर्म क्षत्रिय धर्म युद्ध करना चाहिए तो मालूम है, कोई मालूम नहीं बात नहीं, राजधर्म मालूम है, इधर देखते कि इनको मार कर जीना नहीं चाहते, ये किसके अभिशाप अभिचाटन करना चाहे, तो अभी हम क्या करेंगे, क्या हमको कल्याण, क्या कर्तव्य हमारा है कि मालूम नहीं होता है, क्योंकि इससे यदि जब निश्चय नहीं होता है तो किसके शरण में जाकर के पूछ करके करना पड़ता है, कार्पण दोष से उपहत कृपण अज्ञान ही है, विवेक रहित जो विवेक रहित है होता है उससे स्वभाव कुछ विचार नहीं कर पाता हूँ। धर्म समूढ़ चित्त हो गया, त्वाम पृच्छामि मैं आपसे पूछता हूँ, यत निश्चित श्रेयम तन्मे ब्रूही, यत श्रेयस्या निश्चितम तन्मे ब्रूही, जो श्रेय कल्याण करे निश्चित ही कल्याण करे वो मुझे बताए क्या करूं मैं। ऐसे संकल्प विकल्प होता है उस समय परमात्मा के शरण में विचार कर करे, कभी कभी कार्य में क्या करना क्या नहीं करना विचार होता है, वो तो हमेशा ही मन में से आते समय परमात्मा के चिंतन करके थोड़े धैर्य के साथ विचार करे परमात्मा मार्गदर्शन करते हैं। और धैर्य नहीं है अधैर्य होकर कुछ ना कुछ करते तो हाँ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ बोल देते हो फिर गलती होती है और पाप होता है, थोड़ी शांति से विचार करना पड़ता है और महापुरुष गुरुजन से परामर्श लेकर के करना पड़ता है। यह श्रेय तन में निश्चित हो जो श्रेय मुझे बताइए, और निश्चित हो जो श्रेय बताने के लिए आया वेदांते परम गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वापुनः। वेदांत में शास्त्र में इसे कहा गया परम गुह्यम अत्यंत गोपनीय कहा गया, न अप्रशांताय दातव्यम ज्ञान वो शांत नहीं है उसको दान नहीं उपदेश नहीं करना चाहिए, शांत होना चाहिए अंतगुण थोड़ा शांत हो। इसे सम दम आदि में पहले सम आया, सम युक्त को शांत कहते हैं, अंतगुण उपशम हो तब उसको उपदेश करो तो काम करेगा। सामान्य भी ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ो, सामान्य कोई बात किसमें क्रोध बहुत ही दुख बहुत ही उस समय सुनता नहीं, क्रोध बहुत हो गया उसको उपदेश करो सुनता है और क्रोध बढ़ता है तो हाँ मारे क्रोध बढ़ेगा तो फिर मारे हाथ से उठो सब कुछ नहीं, दूसरे लोग डर जाते हैं उसके पास जाने पर, तुम कौन हो बोलने के लिए हम जानते हैं, कोई बोलेगा क्रोध क्रोध अभी कहा अभी क्रोध नहीं करा डालेंगे क्रोध करता मैं क्रोध तो है उसको दिखो दे नाराज न क्यों क्रोध ना मुझे क्या कहा मैं क्रोध करता हूँ डांट या फिर करता मुझे कहा क्रोध करता हूँ करके करके फिर जैसे बताया सीधा जाकर बोली थप्पड़ लगाए हमको क्यों कहा क्रोध करता हूँ, क्रोध तो है किन्तु उसको भी स्वीकार करना नहीं चाहता है। तो ये क्रोध के समय ये भी कह करके समझाना कठिन होता है। अब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्या है, ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय अशिष्याय वा, पुत्र नहीं हो अथवा शिष्य नहीं हो तो उसको ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं करे, अपुत्राय अशिष्याय जो शिष्य नहीं पुत्र नहीं, शिष्य को नहीं हो पुत्र नहीं तो ये जो उपदेश करते हैं ज्ञान एक उपदेश करते तो कोई आते तो सुनते नहीं देना चाहिए फिर कैसे देते हैं, उपदेश करते कहीं पाठ चलता है पढ़ाते हैं तो अन्य कोई आकर बैठ कर सुनते हैं, मना करना चाहिए तो मना नहीं करते क्यों। वस्तुतः तो गंगा जल ऋषि के समय गंगा का प्रवाह है लेने के लिए कोई मना करता है, जिसकी श्रद्धा है वो लेकर जाता है प्रणाम करता है स्नान करता है आचमन करता है गंगा जल लेकर के जाता है, जिसकी श्रद्धा नहीं वो लेकर जाएगा प्रणाम भी नहीं करता है। गंगा जल किसको प्राप्त हुआ बताओ, जो श्रद्धालु उसको मिला और दूसरे को मिला, क्या गंगा जी मना करती, किंतु किसको गंगा जी किसको गंगा अपने जल प्रसाद दिया किसको दिया किसको दिया, जो श्रद्धालु ने उसको दिया कौन नहीं दिया। इसी प्रकार जो शिष्यत्व न इसे शिष्य भाव नहीं हो जो पुत्र ने शिष्यत्व ने समर्पित नहीं उसको मिलता नहीं है, उपदेश होने पर सुनने पर भी उसको ग्रहण नहीं होता है, गंगा जी बहने पर भी जो श्रद्धालु उसको प्राप्त हुआ जो श्रद्धालु नहीं उसको प्राप्त, गंगा जी मना किया लेने के लिए मना नहीं किया वो तो प्रवाह है, लेकिन जो अधिकारी उसको मिलता है जो अनधिकारी उसको नहीं मिलता है। न दातव्य का यह अर्थ है ऐसे यदि समर्पित भाव समर्पण भाव है उसको प्राप्त होता है नहीं तो प्राप्त नहीं होता है, ये कहा गया। तो ये तो जानता है आचार्यवान पुरुष वेद श्रुति में आया, गुरु उपदेश के बिना किसको ज्ञान नहीं हो सकता है, और गुरु भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने मंत्र दीक्षा लिया हमारे गुरु है इतने मात्र से हो गया, नहीं। मंत्र लेने पर दीक्षा गुरु अलग होते कोई बात नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तब विज्ञानार्थम स गुरु में भावी गचेत, विज्ञानार्थम कहा गया, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाए, खाली मंत्र दीक्षा लेने के लिए नहीं। तद विज्ञानार्थम स गुरु में भावी गचेत, यहां भी आएगा गीता में, उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु अलग, मंत्र गुरु अलग है, यज्ञ भी तो संस्कार करते, गायत्री उपदेश करने वाले भी गुरु होते हैं, बच्चा जो पढ़ता है उस समय भी गुरु उसको पढ़ाते हैं। तो शिष्यत्व ने समर्पित होने पर ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए अर्जुन यहां कहता है शिष्यते हम त्वाम प्रपन्न माम साधी, मैं आप में आपके पास समर्पित शरणागत हूं, मैं शिष्य हूं आपका, मुझे उपदेश कीजिए, कल्याण उपदेश कीजिए। जब शिष्यत्व समर्पित होता है तो उपदेश होता है, अर्जुनों को मालूम है आचार्यवान पुरुष वेद, जो गुरु उपशक्ति के बिना गुरु के पास समर्पित के बिना ऐसे ऐसे कुछ सुन लेकर प्राप्त कर लेगा नहीं होता है, ग्रहण नहीं होता है। शब्द सुन लेना, शब्द कंठस्थ हो जाना, उपदेश भी करना, प्रवचन भी करना, ये हो जाने मात्र से परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। कंठस्थ हो जाए श्लोक पढ़ा भी दे, ज्ञान शास्त्र ज्ञान हो जाए, सुंदर प्रवचन कर दे, लाखों लाखों लोग श्रोता हो गए तो मोक्ष तो मिल जाएगा। अब क्या कमती रहा, कमती क्या रही है? ब्रह्म ज्ञान हो गया, यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया वो कथा नहीं प्रवचन करता है उसको मोक्ष मिलेगा? पढ़ाता नहीं, ना कथा करता है, ना किसको उपदेश करता है, ना कोई उसको पूछता है, भीख मांगकर खा सकता है ब्रह्म ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या मांगकर खाएगा? हैं? ब्रह्म ज्ञान होने पर मांगे ले नहीं जाएगा, बैठेगा उसको तो लेकर के आपको जाकर खिलाना पड़ेगा, ऐसे है। वो कहेगा जाकर के मैं मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, आकर सब लोग आकर के मुझे खिलाओ, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे कहेगा? अच्छा किसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या करेगा आप? मांगने तो नहीं जाएगा, मांगने जाएगा? बोलो, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जाएगा मांगने के लिए, खाने के लिए? भूख लगने पर, भूख लगेगी उसको, खाएगा? खाएगा तो कोई कैसे कैसे कहां से भोजन मिलेगा? जाकर बोलेगा हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, सो भोजन बनाकर हमको खिलाओ, ऐसे कहीं से कोई पूछेगा? जैसे पहले का जी मांगकर खाना सन्यासी महात्मा है, ऐसे मांगकर खाएगा? छुट पे पासा है तो मांगते खाएगा? वो कोई नहीं कि प्रसिद्ध हो जाएगा, सब लोग आकर उसको खिलाएंगे तो ब्रह्म ज्ञानी, प्रसिद्ध लोग बहुत प्रसिद्ध में ब्रह्म ज्ञानी बिल्कुल कितने प्रतिशत होंगे वो कैसे नहीं कहते, बहुत। और अप्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी ऐसे बहुत है जो अप्रसिद्ध, उनका नाम भी कोई नहीं जानते। जितने ब्रह्मज्ञानी हो गए सबका नाम मालूम है किसको, कितने जी, सबका क्या है, दो चार पांच से पहले नाम किसको बता सको, ये बता सकता है? और जिनका नाम हम जानते हैं वो ब्रह्मज्ञानी हम मान लेते हैं, मान ले तो कोई मान लो कोई बात नहीं, किसको कोई मान ले, बहुत लोग जिसको मान लेंगे, ज्ञान नहीं हुआ किन्तु बहुत लोग मान लेंगे, मान लेंगे तो भगवान को तो मानना पड़ेगा, कोई ना यमदूत भी नहीं मानेगा, यमदूत तो क्या तुम्हारा आता इधर है नरक ले लेगा प्रसिद्ध होने पर भी। अर्थात ऐसे ब्रह्मज्ञानी कौन है क्या पता, क्या पता चलेगा, किंतु ऐसे ही ज्ञान ब्रह्मज्ञानी के उपदेश ज्ञान होता है। तद विज्ञानार्थम स गुरु में भगवत, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाए, ऐसे गुरु उपदेश करने से ही ज्ञान होगा। जो अधिकारी है यदि उसको कभी ज्ञान होगा तो ऐसे ही परमात्मा कृपा करेंगे, ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति करा देंगे, वो सद्गुरु के उपदेश से ही ज्ञान होगा। नहीं कि हम इनको गुरु मान लिए उसके बाद हम कहीं न कहीं कुछ करते 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 अपने आप ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। जहां ज्ञान उपदेश प्राप्त होता है ऐसी भावना नहीं हो, शिष्यत्व में समर्पित नहीं तो उपदेश काम नहीं करेगा, ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन यह अपने शिष्यत्व हम कहकर शिष्यत्व स्वीकार करके समर्पित होता है, त्वाम प्रपन्नम आपके पास प्रकट प्रपन्नम शरणागतम मुझे उपदेश कीजिए। श्लोक बोलो कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म शिष्यस्तेहं शादिमान् त्वां नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं नहि प्रपश्यामि तृतीय पाद में अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम इसको देख मैं बोलता हूँ बोलना इसमें कि इसको ये ठीक नहीं कर पाते। अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम अवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम कितने पद हुआ चार भूमौ असपत्नम रिद्धम अवाप्य रिद्धम संपत्ति कुछ समृद्ध समृद्ध संपत्ति को असपत्नम सपत्न रहित शत्रु रहित निष्कंटक राज्य शत्रु रहित समृद्धि को प्राप्त करने पर अवाप्य कैसे रिद्धम समृद्ध कैसे है समृद्ध है कैसे राज्य का विशेषण असपत्नम रिद्धम राज्यम राज्य आगे है राज्य कैसे होना चाहिए कोई राज्य मिल गया और दुर्भिक्ष है धन संपत्ति नहीं कुछ नहीं वो राजा क्या करेगा कोई संपत्ति नहीं दुर्भिक्ष है धन संपत्ति कुछ नहीं राज्य मिल गया संपत्ति तो है राज्य मिल गया किंतु शत्रु बहुत है तो क्या हो जाएगा इसलिए कहते भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम राज्य समृद्ध राज्य मिल जाए कोई सपत्र कोई शत्रु नहीं हो भूमि में तो पृथ्वी में कह दिया सुराणाम अपि चाधिपत्यम अवाप्य सुराणाम देवताओं के भी आधिपत्यम अवाप्य देवता आधिपति इंद्र पद प्राप्त कर लेने पर भी इतने होने के बाद भी कह अर्जुन कहता है यदि इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम अपनुद्यात शोकम उच्छोषणम अपनुद्यात मम इंद्रियाणाम इंद्रिय में जो शोकम उच्छ सुखाता है मेरा शोक को दूर कर दे कोई इंद्रियाणाम उच्छोषण इंद्रिय सुख जाते हैं नष्ट इसको दूर कर दे सारे यह लोक में निष्कंटक समृद्ध राज्य प्राप्त कर ले करने के बाद देवताओं के आधिपत्य इंद्रपद भी मिल जाए तो भी सारे ब्रह्मांड मिल जाए तो भी मैं देखता हूं मेरा शोक कोई दूर करने वाला ही नहीं सब मिल करके सुखाने वाले इंद्र को सुखाने वाले शोषित करने वाले ऐसा शोक को दूर करने वाले कोई ही नहीं देखता हूं इसलिए मुझे बताए मैं क्या करूं यह श्रेयता निश्चित मुझे बताए क्योंकि मैं देखता हूं युद्ध करेंगे उनको जीत ले जीत करके प्राप्त हो जाए ये क्या इतने नहीं सारा ब्रह्मांड मिल जाए भूमौ असपत्रम रिद्धम राज्यम सपत्न होता है शत्रु, असपत्न शत्रु रहित, रिद्ध हो गया समृद्ध संपन्न, राज्य का विशेषण राज्य इसे प्राप्त हो जाए। सुराणाम अपिचा आधिपत्यम अवाप्य नहीं प्रपस्यामी, मैं नहीं देखता हूं, यत मम अपनुद्यात, जो दूर करे, क्या दूर करे, शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रिय में जो इंद्रियों को सुसाने वाले सुखाने वाले, ऐसा शोक को दूर कर ले, ऐसा जो शोक है वो दूर करने वाले मैं नहीं देखता हूं, जो अधिक दुख है शोक है, राज्य प्राप्त हो जाने क्या होगा, कोई किसका मर जाता है धन संपत्ति उसमें है, वो शोक को दूर नहीं कर पाता है, भूख बहुत लगते समय भोजन नहीं मिला, कितने रुपया मिलने से क्षुधा निवृत्ति हो जाती है, जितने रुपया मिलने पर क्षुधा निवृत्ति नहीं होती है, स्थल पर पहुंच गए कहीं भोजन नहीं मिलता है, कोई लेकर के करोड़ों रुपया दे दो, दे दे, आगे भोजन करने की इच्छा होगी या नहीं, भोजन के बिना चलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा तो तेरी मांग कर खाएगा, तीन चार पांच सात दिन रहेगा, बाद में भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, कोई खा रहा है झूठा है मांग कर खाएगा, तो सब झूठा भी मांग कर खा लेगा, नहीं खाएगा, मरने के तो कष्ट होगा तो वो खाएगा, स्वप्न में कोई महाराज सम्राट भी भीख मांगता है, मांगता है नहीं, हाँ इसी प्रकार तिथि आने पर सब कुछ होता है, जितने संगीत आदि कुछ सुनने पर क्षुधा निवृत्ति हो जाती है, इसलिए जो शोक है भाई बंधु को मारने पर जो शोक होगा, शोक मार करके ये साम्राज्य प्राप्त हो जाए, इंद्रपद मिल जाए, तो ये दुखों को कौन दूर करेगा, जबकि इसका कोई मर जाता है दुखी होता है उस समय देखो उसको क्या देकर समझा करके उसका शोक दूर करोगे, कोई शोक दूर नहीं कर सकते, तो हम तो कहते थोड़े उसको रोने दो, क्या करेंगे, क्या बताएंगे, किसकी ऐसी ऐसी घटना हो जाती है, भरे दुख की घटना, बहुत ऐसी घटना होती है, अब सब घटना तो सुनते हैं सब जानते हैं, ऐसे ऐसे घटना होती है तो बड़े दुखी होकर के क्या करें, क्या बताओ, अब उस समय क्या कहेंगे, तुम भगवान का नाम लो, भगवान का नाम आजकल एक ही लड़का है योग्य बना और शादी कर लाया समाप्त हो गया, क्या 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 ऐसे ऐसी घटना, कई लड़का वो लड़के कुछ हो जाए, ऐसे ऐसे घटना बहुत है, अभी अर्जुन इसी स्थिति में है, ये सब मिल जाए में तुम दुख दूर करने वाले कोई नहीं है, तो मैं क्या करूं जो श्रेय कल्याणकारक मुझे बताए करके, अभी शरणागति हो गया, गुरु शरणागति, शरणागति होने पर अभी उपदेश करेंगे, श्लोक बोलो, नहि प्रपश्यामि यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रि अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एव मुक्त्वा संजय ने कहा, सुनने वाले बैठे हैं कौन, धृतराष्ट्र बोले, एवं उक्त्वा ऐसा कह करके, एवं मतलब इस प्रकार किस प्रकार है, यहां से लेकर अर्जुन उवाच से लेकर के यहां तक एक दो तीन चार पांच श्लोक में कथम विषम अहम संख्या लेकर के पांच श्लोक में अर्जुन ने कहा, भगवान इसके पहले कितने श्लोक बोले थे, दो, दो श्लोक बोलने का, तो अर्जुन ने पांच श्लोक बोला, बोलने के बाद संजय बोलते अभी क्या हुआ, परंतप गुड़ाकेश परंतप ऋषिकेशम एवं उक्त्वा गोविंदम न योत्स्य इति उक्त्वा तूष्णिम बभूव, चुप हो गया, नहीं लड़ूंगा। एवं उत्तर है 500 के में कहा गया, किसने कहा? गुड़ा केश परंतप, परंतप शत्रुतापन, शत्रु को कष्ट देने वाले, शत्रु को नष्ट करने वाले, ऐसा जो अर्जुन है, जो परंतप है, परम ताप है थी, शत्रु को कष्ट देने वाले, मारने वाले, नहीं जो लड़ूंगा ऐसे बोल दिया। गुड़ा केश शब्द पहले आया था, गुड़ा है ऐसे ऐसे गुड़ा, गुड़े के समान केश अग्रभागी सा है, और गुड़ो का अर्थ है लगुड़ लाठी दंड, उसके समान दीर्घ केश जिसका वो भी गुड़ा केश है। गुड़ा है लगुड़ दंड, दंड है वो दीर्घ, और आ समानता केश लंबा लंबा बाल है, समान है, ये भी गुड़ा केश है। अग्रभाग ऐसा हो तो भी गुड़ा केश, और बाल लंबे लंबे हो ये भी गुड़ा केश है। इतने और गुड़ा केश हो, जो गुड़ा को कहते क्या था, शिव शंकर, शंकर शिव है, ईश्वरस्य शिव जी के भक्त, इसे कहा। किसको कहा? ऋषिकेशम, ऋषिकेश भगवान से कहा, भगवान का ऋषिकेशम, ऋषिकेश के ईश्वर, इंद्र के ईश्वर, सबके हृदय के ईश्वर है, इनको कह करके। एवं उत्तरा न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति गोविंद मुक्त्वा, गोविंद को कह करके तो स्निम बहु चुप हो गया। गोविंद है, गाय को प्राप्त करने वाले तो गोविंद, गो का अर्थ वाणी है, शब्द भी है, गोभीर वेदांत वाक्य एवं विंध्यते लभ्यते इति गोविंद, परमात्मा को प्राप्त किसके द्वारा किया जाएगा? गोभीर, गोभी का अर्थ वेदांत वाक्य ही वाणी के द्वारा, वेदांत वाणी के द्वारा ही जिसकी प्राप्ति होती हो गोविंद, गोभीर वेदांत वाक्य रेव विंध्यते लभ्यते इति गोविंद, वेदांत वाक्य के द्वारा ही उनकी प्राप्ति होती, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार वेदांत प्रमाण से, वाक्य से, वेदांत वाक्य ही प्रमाण, श्रुति वाक्य प्रमाण, उसी वाक्य से ही उनका साक्षात्कार होता है। इसे गोविंद सर्वत्र दिखता है, भगवान श्री कृष्ण सर्व में दिखता है, दिखा जो भक्त लोग को देखे ना उनको सर्वत्र दिखा, किंतु वास्तव स्वरूप भगवान क्या कहते हैं? मया तथम इदम सर्वमिषम आएगा, व्याप्त है सर्वम, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त में हूं, वो दिखता है भगवान श्री कृष्ण देखने पर, तो रूप तो दिखता है, परिचन्न दिखता है, किंतु उनका वास्तव स्वरूप स्वयं कहते मेरा रूप। ये जो वास्तव स्वरूप है, कवि लीला विग्रह से प्रकट होते भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, कृपा करके प्रकट होते, किंतु उनका वास्तव स्वरूप तो वेदांत वाक्य से होता है, इसलिए भगवान कहीं कहीं उपदेश करते हैं। रामायण में श्री राम गीता है, राम जी को हनुमान पूछते हम आपकी भक्ति कैसे करेंगे, और मेरे उपासना कैसे करनी है, मेरा वास्तव स्वरूप क्या है। राम हृदय अध्यात्म रामायण में, सारे शास्त्र में भगवान यहां भी क्या कहते, स्वरूप क्या है, भगवान स्वयं बताते हैं क्या मेरा स्वरूप है। तो ही स्वरूप जानने के लिए, ज्ञान के लिए वेदांत वाक्य के द्वारा ही उनका ज्ञान होता है, और जितने स्मृति वाक्य वेदांत मूलक वो भी प्रमाण है। ऐसे भगवान गोविंद का यहां क्यों संजय गोविंद नाम लेता है, ऐसे कैसे है भगवान है और गोविंद वेदांत के उपदेश करेंगे, अभी वेदांत वाक्य द्वारा प्राप्त होने वाले गोविंद क्या उपदेश करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उपदेश करेंगे, वेदांत वाक्य उपदेश करेंगे। इसलिए जो उपदेश आगे करने वाले है वेदांत उपदेश होगा, वेदांत है ज्ञान, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, उसका प्रतिपादक कौन से ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। त्यां गोविंद ऐसे कहकर चुप हो गया, मौन हो गया अर्जुन। श्लोक बोलो, संजय उवाच एव मुक्त्वा, अभी कहीं हो सकता है धृता से मन थोड़ी प्रसन्नता आ जाएगी, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है, ऐसे तो सुन लिया था भीष्म सरसजा पर है, सुना मालूम है, तो भी प्रसन्न सिद्ध कहता है इसी का युद्ध नहीं करूंगा, हो गया, बढ़िया हुआ, बढ़िया, मन में थोड़ा खुश लगता है, अच्छा हुआ। कभी कुछ ऐसे दिखने पर चित्र देखते समय कोई होता है, कोई खुश होते हैं, कोई नाराज हो जाते हैं, जानते कुछ है ही नहीं, किंतु सुनते सुनते इसे तन्मय हो जाते हैं। युद्ध नहीं करूंगा हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। इसलिए आगे कहते संजय बताते हैं, इतने करने के बाद भगवान उसकी उपेक्षा नहीं करके आगे उसको सांत्वना देकर कहते हैं। ये नहीं कि उसे कह कर जो कहे वो नहीं करे तो भगवान कहे चलो फिर आपको तो हमारे क्या पड़ा है, तुम युद्ध नहीं करो तो हम भी क्या, हमारे कोई काम नहीं क्या, ऐसा नहीं कहा। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। ऋषिकेशः हे भारत तम प्रहसन्निव ऋषिकेश प्रहसन्निव उभयोः सेनोर्मध्ये इदं वचः उवाच विषीदन्त छुट्या तम विषीदन्तम् उभयोः सेनोर्मध्ये प्रहसन्निव ऋषिकेश इदं वचः उवाच। ये शब्द कहा कहां कहा? उभयोः सेनोर मध्य दोनों सेना के बीच में। ये नहीं कहा चलो तुमको वहां बताएंगे उपदेश करना है तो उपदेश वही शुरू हुआ, जहां पूछा वहीं उपदेश हो, वहां चलो कहेंगे बाद में कहेंगे नहीं, वही दोनों सेना के बीच में। अभी कोई युद्ध हो जाएगा कोई मार देगा नहीं, अभी ऐसे युद्ध नियम है वो शंखनादि के आपस परस्पर संकेत होगा तो युद्ध शुरू होगा धर्म युद्ध। तो भी दोनों सेना के बीच में अभी ब्रह्म विद्या का आरंभ करेंगे उपदेश करेंगे इदम वचः कहते यही वन शब्द किसको कहा विषीदन्तम् तम विषाद युक्त अर्जुन को कहा विषीदन्तम् विषाद दुख दुखी अर्जुन को। और जब कहते कैसे कहते प्रहसन इव प्रहसन हत्ते हुए जैसे प्रसन्न खुश होकर अर्थात ना तो नाराज हो गई ना तो उपेक्षा कर दिया नाराज नहीं हुआ हंसते हंसते कहते हैं। तो शिष्य प्रेम से बच्चे को सिखाते अभी शिष्यत्व में समर्पित हो गया हंसते हंसते कहते दोनों सिने प्रसन्न एवं हंसते हुए हंसने का नहीं है प्रसन्न होकर के प्रसन्न होकर के एकदम प्रसन्न होने पर मुख ऐसे खिल जाता है खुश होकर के उसको कहते ये तो रो रहा है दुखी है किन्तु कभी कभी पिता माता बच्चे रोता है तो पिता माता खुश होते हैं फिर रोना बंद किया तो और थोड़ा रुलाते ऐसे कुछ चीज ले लेंगे तो बच्चा रोता है ना फिर दे देते हैं वो खुश हो गया फिर कोई दूसरा ले लेता है लेता है ना नहीं वो तो रहेगा किन्तु माता पिता खुश होते हैं। पंचोदशमी से आया जो पुत्र के प्रति प्रेम करते ना अपने सुखों के लिए उसको कष्ट होता है नहीं होता है ये विचार की अपेक्षा अपने सुख के लिए पुत्र प्रिय होता है। पिता पुत्र के छोटे बच्चा है उसमें लेकर उसमें दाढ़ी काटने के बाद ये जो होता है उस लेकर घिसते हैं वो कोमल शरीर में दाढ़ी घिसने पर उसको कष्ट होता है वो तो रोता है किंतु पिता बड़े खुश से उसको घिसते हैं किसके सुख के लिए अपने को अच्छा लगता है बच्चे को बच्चे क्यों रोता है वो कांटा जैसे लगेगा उसको इसी प्रकार सब चीज अपने सुख के लिए। तो यहां भगवान तो अपने सुख के लिए नहीं किंतु प्रेम से जैसे बच्चे को बच्चा रोता है तो हंसते हंसते कहते तभी उसका किस समय कैसे बोलने पर शोक की निवृत्ति होगी। माता जानती है बच्चे को किस प्रकार क्या बोलने पर शोक निवृत्ति होगी किस समय लालच दिखाती किस समय खिलाती किस समय गोद में ले लेती क्या करती है। तो भगवान स्वयं जानते हैं माता पिता से बढ़ करके दोनों सेना में हंसते हंसते कहा ये वचन कहा क्या कहा वो आगे अपराने बताएंगे श्लोक बोल दो। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन ये श्लोक नहीं बोलते बहुत बोलने के बाद भी श्लोक बोलना है जिनको आता है बोले जिनको नहीं आता है बोलो जोर करके बोलना पुस्तक लेकर के आना गीता का मूल पत्र छोटे पुस्तक में भी चलेगा, बड़े भी हो तो श्लोक पाठ करना चाहिए अवश्य। हाँ, इसको फिर बोलना, तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वच। विषीदन्त ऐसा नहीं करना, विषीदन्तमिदं वच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र में चार अक्षर में रुका, इसका अर्थ नहीं कि सर्वत्र चार अक्षर में लंबा करना। कोई के बोलते विषीदन्त मिदं, विषीदन्त मिदं वच, ये लंबा नहीं करना। कैसे बोलना, विषीदन्त मिदं वच। अभी मैं बोला था, मेरे साथ बोले थे, अभी मैं नहीं बोलूंगा, सब लोग बोले, एक बार में सुनना चाहते, सब लोग बोलना, तमो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्यते। ओम शांति शांति शांति।